पंचदशी के कुटस्थ दीप प्रकरण का 54 श्लोक है। बोध्यादीनाम स्वरूपम यो विविनक्ति स तत्त्ववित् स एव मुक्त इत्येवम् वेदान्तेषु विनिश्चय बुद्ध्यादीनां स्वरूपं यो विविनक्ति स तत्त्ववित् स एव मुक्त इत्येवम् वेदान्तेषु विनिश्चयः। विनिश्चय, अब ये बता रहे यहां पर कि भाई ये मोह क्या है, संसार क्या है। पहले प्रश्न किया था ना 53 श्लोक में कि का बुद्धि कोयम आभासः को वा आत्मा जगत कथम। इन बातों का निर्णय मल निश्चय न होने से मोह होता है। मोह का नाम ही संसार है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, प्रसिद्ध कहावत है ना, सकल व्याधि का मूल, उससे बहुत शूल उत्पन्न होते शूल मोह। अब ये बता रहे मोह का निवर्तन कैसे होगा। ये मोह है, मोह का निवर्तन कैसे। अस्य किम निवर्तकम्, अस्य मल संसारस्य, इस संसार का निवर्तक। संसार मतलब ये मत समझना अपना जो मकान दुकान ये सब नहीं। संसार मतलब कि आपके मन में जो बैठी हुई अहंता ममता है, जैविक संसार। पहले आप पढ़ चुके हैं ना कि जो ईश्वर की सृष्टि है वह तो साधक है, बाधक नहीं। ईश्वरीय सृष्टि आपके साधना का, सुख का, आनंद का, भगवत प्राप्ति का साधक है। परंतु जो एक जैविक सृष्टि है ना, जैविक सृष्टि, जीव सृष्टि, वही जो है ना बाधक है। तो उसकी निवृत्ति कैसे है, वो इस बात को बता रहे। अस्य किम निवर्तकम् इति आकांक्षायाम्, ऐसी आकांक्षा होने पर बुद्ध्यादि स्वरूप विवेके एव निवर्तक। बुद्ध्यादि स्वरूप के विवेक मतलब विवेचन कि बुद्धि क्या है, शरीर क्या है, आभास क्या है, आत्मा क्या है, जगत क्या है, इन सब का ठीक से विवेचन हो जाए। विवेक बोलते हैं पृथककरण, इसका नाम बुद्धि है, इसका नाम शरीर है, इसका नाम मन है, इसका नाम संसार है, और इसका ये स्वभाव है, इसका ये परिणाम है। इतना ठीक से हमारी मगज में बैठ जाए, ज्ञान हो जाए, तो अपने आप मोह भंग हो जाएगा। एव निवर्तक इत्ते प्रत्ययसी अभिप्राय से तद्वान ज्ञान एव, उसको ज्ञान ही कहते हैं। तत् एव अर्थ निवृत्ति त्याह, इसी से यहां क्या लिखा, अर्थ अर्थ की अनर्थ है, अर्थ होना चाहिए ना, अनर्थ की निवृत्ति हो जाएगी। हाँ अनर्थ होना चाहिए, अर्थ लिखा है ना, नहीं अनर्थ कर लो न छूट गया होगा। तथा एवं अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ की निवृत्ति हो जाएगी, अर्थ की नहीं अनर्थ की निवृत्ति हो जाएगी। न एक जो है ना ऊपर से प्रक्षिप्त कर देना। बुद्ध्यादिनाम स्वरूपं यो विविनक्ति, बुद्ध्यादि के स्वरूप को विवेक पूर्वक जो जान लेता है, ऐसा जो तत्वज्ञानी है, स एव मुक्त, वही मुक्त है, ऐसा वेदांत में निश्चय करके बताया गया है। ये सारी बातें आप जानते हैं। बुद्धि क्या चीज है? अपंचीकृत पंच महाभूतों के सात्विक सत्व अंश, वो भी समष्टि मिला हुआ पूरा, अपंचीकृत पंच महाभूतों के समष्टि सात्विक अंश को क्या बोलते हैं? महतत्व। और ये व्यष्टि में बुद्धि हो गई। अपंचीकृत पंच महाभूतों के सात्विक सम्मिलित समष्टि का नाम है महतत्व, व्यष्टि का नाम बुद्धि। उधर महत बोलते इसको बुद्धि बोलते हैं। क्या ऐसा है? एक मिट्टी का दीवाल है और एक जो है ग्रेनाइट का दीवाल है, दोनों में अंतर है कि नहीं बताओ? जो ग्रेनाइट की दीवाल है वह भी भौतिक है और मिट्टी का भी, पर मिट्टी का अस्वच्छ होने से सूर्य का उसमें प्रतिफलन नहीं होगा और ग्रेनाइट के दीवाल में सूर्य की रोशनी पड़ने से प्रतिबिंब पड़ेगा। तो दोनों में अंतर है ना? क्या अंतर दोनों में है? एक है स्वच्छ, एक मलिन है। बस ऐसे यहां पर सब तो पंचभूत से बना, पर आपकी बुद्धि जरा स्वच्छ है सत्व प्रधान होने से, और शरीर आदि थोड़ा सा इसमें मलिनता है, क्योंकि तमोगुण का कार्य है शरीर, सत्वगुण का कार्य है बुद्धि। ये पंचीकरण बता दिया है, पंचीकृत पंच महाभूतों के सात्विक। हाँ बिल्कुल करता ही, चंद्रमा मन सो जाए तो बोलते ना, चंद्रमा समष्टि है व्यष्टि में मन, मतलब कि इस मन के अभिमानी देवता जो हमारे समष्टि के हैं उनका नाम चंद्रमा, जो मन हमारा ना। तो यदि आपका मन शुद्ध हो गया जो चंद्रमा की कृपा होगी, और वहां पर हलचल होगा तो यहां भी कुछ गड़बड़ होता है। इसलिए देखो ना, हमारे ऋषियों ने ये जो है ना वैज्ञानिक विचार करके विधान किया कि पूर्णमासी को अमावस्या को विशेष सत्कर्म करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है। उस दिन जरा हमारा मन बहुत स्वच्छ होता है, स्पष्ट होता है। कभी देखना, आपको पता नहीं है फिर भी एकादशी पूर्णिमा के दिन अच्छे विचार अपने आप आते हैं, पता न होने पर भी अच्छे कार्य होते हैं। तो उससे नियंत्रित है हमारा ये मन, वो समझती है चंद्रमा ये व्यष्टि है। तो करे स्वरूप को ठीक से जान लिया, वही तत्व ज्ञानी है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में बड़े मजे से मतलब रहती हैं, खूब मजे से, पर घर में रहने से आप घर वाले तो हैं, मकान वाले तो हैं, मकान मालिक तो हैं, पर अब मकान नहीं होते ना। ऐसे शरीर इंद्रियां बुद्धि इसमें मैं है, मैं मतलब कि आप हैं, हम लोग हैं। मकान जैसे हमारा आधार है, स्थूल शरीर का आधार है मकान। अब मकान मतलब उसमें बाथरूम भी होगा, है ना, किचन रूम भी होता है, बेडरूम भी होता है, थोड़ा घूमने फिरने को जगह चाहिए ना, नहीं तो आदमी उब जाएगा। मकान एक समुदाय का नाम है, संघ का नाम है। हाँ नहीं, पहले दृष्टांत समझ लो, दृष्टांत तो अपने आप तुरंत आ जाएगा। पहले दृष्टांत, जो आपका मकान है क्या चीज, उसमें सब कुछ है, भोजनालय है, बाथरूम है, थोड़ा टहलने के लिए गैलरी है, बेडरूम है, मेहमान है उनके बैठने के लिए भी रखे, मेहमान के लिए सब कुछ है। इतना सारा व्यवस्था होने पर भी आप मकान नहीं हो जाते हैं, होते मकान, मकान अलग आपसे है। ऐसे ही यह जो हमारा शरीर भी मैं के लिए मकान ही है। ये बात समझ में आ जाती है कि मकान हमारे लिए है, मैं मकान नहीं हूं, पर यहां उल्टा हो जाता है। या हम लोग क्या करते हैं कि अपने शरीर को मतलब मकान को ही मैं मान लेते हैं। या जो अच्छा मकान आपका पुराना हो गया 50-60 साल का, तो मकान के पुराने जीर्ण शीर्ण होने से आप जीर्ण शीर्ण पुराने होते हैं, ईमानदारी से होते हैं? हाँ, लोग बोल सकते हैं कि पुराने मकान वाला मालिक, ऐसा तो बोल सकते हैं व्यवहार में, परंतु आप जीर्ण शीर्ण पुराने नहीं होते हैं। नए मकान में बूढ़ा आदमी जाए तो जवान हो जाएगा? बताओ, जवान होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना। ऐसे यहां पर है, ये जो शरीर हमारा है मकान के समान है, एक सुंदर मकान है, पर होता क्या है कि हम लोग इस शरीर रूपी मकान से इतना तादात्म्य कर लेते हैं, तादात्म्य इतना हो गया, इतनी आसक्ति हो गई, इतना संग कर लिए, हम किसी को अपना स्वरूप मान लेते हैं। जरा मकान को सजा दिया, प्रशंसा कर दिया तो एकदम खुश हो जाते हैं, और किसी ने कहे क्या जो है मकान है जीर्ण शीर्ण होने आ रहा, बेकार है, बोलते इसको मैं दिखाता हूं मैं कैसा हूं, होता है कि नहीं? इसी को आपको अलग करके जानना है। जैसे कि व्यवहार में हम समझते हैं कि मैं अलग हूं, मेरा मकान अलग है, यह जो मकान है हमारे लिए साधन है, सोने के लिए, बैठने के लिए, भोजन करने के लिए, रहने के लिए, बात करने के लिए, पर मैं मकान से अलग हूं। ऐसे शरीर, ये जो हमारा है ना स्थूल शरीर, इसके बाद सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर, ये तीनों शरीर हमारे लिए मकान के समान, और तीनों शरीर से अलग मैं आत्मा हूं। ऐसा जो जान लेता वह है तत्वविद, मतलब तत्व ज्ञानी है, तत्व को ठीक से समझ लिया, जिससे अलग करके जान लिया। नहीं, काम लीजिए, परंतु उसी को कुछ सब कुछ मान लेना ठीक नहीं ना। काम तो लेना आपको, परंतु उसी को सब कुछ मान लेना ये बुद्धिमानी नहीं है, वही बता रहे यहां पर। ज्ञानी अपने शरीर का दृष्टा बन जाता है, जैसे सपने में, कई बार मैं तो कई बार देखा हूं, आप भी देखे होंगे, कि आप देखते ना कि हमारी मृत्यु हो गई, सपने में दिखाई पड़ता है कि मैं मर गया, यहां तो आप जिंदा है, पर सपने में क्या देखते? मैंने 2-4-5-10 बार देखा है कि मैं मर गया, अच्छा सपना है। ऐसे सपने से 100 वर्ष की आयु होती है, जो आदमी ऐसा देखे ना सपने में कि मैं तो मर गया, तो कहते 100 होता है, पूर्ण आयु उसको मिलती है, 116 वर्ष की, 8 वर्ष की आयु मिलती है। मैं तो कई बार देखा अपने आप को, तो आप मर जाते हैं? नहीं मरते, सपना में आपने देखा, फिर भी आप ऐसे ही, जैसे सपने में आप दृष्टा अलग हैं। देखिए, सपना में एक शरीर तो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, एक पलंग पर पड़ा हुआ आराम से, अच्छा, जिस शरीर को देख रहे हैं वो शरीर आपका काल्पनिक है, जो आपका व्यवहारिक शरीर है वस्तु बिस्तर पर पड़ा हुआ है, बड़े मजे से सब बंद है, दरवाजा खिड़कियां एसी चल रही है, परंतु स्वाप्निक शरीर से आप क्या देख रहे हैं कि मैं हिमालय की यात्रा कर रहा हूं, गंगा जी में नहाया, मैं समाधि बैठ गया, इतनी समाधि लग गई कि आप देखते हैं कि मेरा शरीर वहीं पर छूट गया, तो वह जो दृष्टा है वह अलग देखने वाला, शरीर अलग। ऐसे यहां पर समझना कि मैं शरीर नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, मैं मन नहीं, मैं अहंकार नहीं, ये सब पांच भौतिक है। जब आप ऐसा निश्चय करके जान लेंगे कि वास्तव में मैं यह शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, बुद्धि नहीं, मन नहीं, अहंकार नहीं, चित्त नहीं, मैं फिर क्या हूं? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ऐसा मेरा स्वरूप है। ऐसा जान लेने के बाद मोह भंग हो जाएगा। ये मोह शब्द का अर्थ होता है मुह वैचित्य धातु से मोह बनता है, मुह वैचित्य। जब मोह होता है तो विविध प्रकार से आप विक्षिप्त हो जाते हैं, अनेक प्रकार से, मुह वैचित्य। आपका चित्त बिल्कुल विक्षिप्त हो जाता है। यह जो मोह है उस मोह भंग के लिए उपाय बताया कि भाई ठीक से समझ लो, जैसे आप समझते हैं कि मेरा मकान है पर मैं मकान नहीं, पक्का हो जाता है ना कि मेरा मकान, मैं मकान का मालिक हो सकता हूं इसमें कोई संदेह नहीं है, पर मैं मकान नहीं। क्या परम पूज्य खंडाजी महाराज बताया करते ना, कई बार सुना होगा आप लोगों ने कि एक जो है ना बहुत बुजुर्ग थे, तो बच्चों ने कहा दादाजी जमाना बदल गया, एक करोड़ों का मकान इसको बेचते हैं और अरबों का धंधा करेंगे। दादाजी ने कहा अरे बेटा ये हमारे पिता ने बनाया था, इसको मत बेचो हमारे जीते जी। अब बच्चों की बात तो माने नहीं, दादाजी कहीं गए, इतने में बच्चों ने पूरा मकान बेच दिया, पैसा भी ले लिया, सब हो गया। एक महीने के बाद दादाजी आए, अब उनको क्या पता कि बिक गया। प्रातःकाल ठंडी का दिन आकर अपना डंडा लेकर उसके बाहर आराम से बैठ गए, संयोग से मकान में आग लग गई। अब आग लग गई तो लगे चिल्लाने बचाओ बचाओ, मैं जीते जी मर जाऊंगा, ये जो है ना मकान मेरा बहुत प्यारा है, प्राण से प्यारा है, कोई सुन ना मेरी आवाज, जोर से चिल्लाए। इतने बच्चे आ गए, बोले दादाजी चलो चलो आज चलो भागो। बोले क्यों दिक्कत नहीं है मकान में आग लगी है? बोले दादाजी मकान बिक गया 4 करोड़ में, पैसा भी आ गया, किसी और के नाम हो गया है, ले चलो भागो जल्दी भागो। अब उसको बुझाना नहीं क्योंकि भागो जब तक मालूम था कि मेरा मकान, तब तक हाँ वो था, चिल्ला रहे थे बचाओ, कोई सुन रहा कि नहीं मेरी आवाज, मैं जीते जी मर जाऊंगा मकान जल जाएगा। तो जब मालूम पड़ गया किसी और को हो गया, पैसा भी मिल गया, तो चलो जल्दी फटाफट, होता है कि नहीं ऐसे? यहां पर भी जैसे अज्ञान से दादाजी ने मकान को क्या मान रखा था, मेरा है, पर जब ज्ञान हुआ कि मेरा नहीं, ये तो बिक चुका है किसी और का है, तो मोह भंग हो गया, चलते बने जलने दो, क्या फर्क पड़ता है, जले चाहे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ज्ञान हो जाए या जो शरीर है ना ये मेरा नहीं बल्कि पंचभूतों का, पंचभूत के तामस अंश से स्थूल शरीर बना, सात्विक अंश से बुद्धियादि इंद्रियां, राजस्थान से पंच प्राण बने, तो मैं किससे अलग हूं, ऐसा ज्ञान हो जाएगा तो शरीर से मोह भंग हो जाएगा। ये मोह भंग का उपाय बता रहे हैं। यह जो उपाय है ये सांख्य योग का है, ज्ञान योग का, विवेक चूड़ामणि में बताया है ना, सत्संगत्वे निसंगत्वम, आगे निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोह का उपाय यहां बता रहा है। वही पहले आपको सत्संग करना है, सत्संग मतलब क्या जानते हैं ना, सत्संग मतलब कि जैसे कि धन वाले को धनी बोलते, झोपड़पट्टी वाले को धनी थोड़ा बोलेंगे, धन वाले को धनी, विद्या वाले को विद्वान बोलते हैं ना, जिसको ज्ञान उसको बोलेंगे ज्ञानी। ऐसे ही यहां पर मैं भूल गया क्या बोल रहा था, हाँ, तो जिसके जीवन में सत तत्व उतर गया, सत सत मतलब परमात्मा, जिसके जीवन में सत चित आनंद उतर आया उसको बोलेंगे ये सत्संगी है। आप जो सत्संगी सब है ना सत्संगी, क्योंकि आपके जीवन में सत जो आत्मा है वह उतर आया, इसलिए आप सत्संगी हैं। तो सज्जनों के संग करने से क्या प्राप्ति होती है, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंग मतलब नितराम अच्छी तरह से संग का अभाव, देखो निसंग का अर्थ है नितराम अच्छी तरह से संग का अभाव हो जाता है, संग मतलब आसक्ति, आसक्ति का अभाव हो जाता है। जब आपने निश्चय करके समझ लिया कि भाई मैं आत्मा हूं, ये शरीर हमारा नहीं बल्कि किसका है, पंचभूतों का, बात सही है, ये पंचभूतें मिल जाएगा। लाख प्रयास करो इस शरीर के एक अंग को भी हम साथ ले नहीं जा सकते, और ले जाने की दुराग्रह करेंगे तो क्या होगा मालूम है, दुराग्रह किया कि ले जाऊंगा मैं तो क्या होगा ना, वो कथा मालूम है ना, उल्टा लटक जाएंगे ईश्वर के मुहाने पर, त्रिशंकु बनना पड़ेगा। दुराग्रह किया यदि हमने कि शरीर को लेकर के स्वर्ग जाएंगे ब्रह्मलोक, तो फिर क्या होगा, त्रिशंकु बनना पड़ेगा, लटकना पड़ेगा सर नीचे पैर ऊपर, तो शरीर को अब ले नहीं जा सकते चाहेंगे तो भी। तो शरीर किसका है, पंचभूतों का है, बुद्धि भी, इंद्रियां भी, मन भी, इसके हम उपयोग करता है, पर मैं या नहीं हूं। ऐसा ज्ञान होने के बाद आपका संग धीरे धीरे छूट जाता है, अभ्यास करना पड़ता है। जिस प्रकार सिगरेट का जो धुआं या शराब, कितना कड़वा कड़वा तीखा, प्रारंभ में बहुत तीखा लगता है, सिगरेट का जो धुआं है, कड़वी कड़वी धुआं, तीखा लगता, पर आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे अभ्यास हो जाने के बाद उसमें मनुष्य वह शराबी और नशेड़ी क्या करता, स्वाद विकसित कर लेता है। स्वाद विकसित होने के बाद अब उसके बिना रह नहीं सकता, दो चार पांच महीने तो कड़वा लगता है, पर उन नशेड़ियों के संगत में पड़ने से प्रारंभ में कड़वी धुआं को भी सहन करता है। सहन करते करते दो चार महीने के बाद इतना अभ्यास हो गया कि वह कड़वी धुआं अब उसे मीठा लगता है, स्वादिष्ट लगता, उसको छोड़ नहीं सकता, बल्कि चुपके से पीता है। होता है कि नहीं, ऐसे यहां पर भी यदि आप धीरे धीरे अभ्यास करें तो प्रारंभ में तो कठिनाई मालूम पड़ती है कि क्या ये जीव की, ब्रह्म की, माया की, प्रपंच की कहानी चल रही। प्रारंभ में सबको लगता है, नई चीज लगती है ना भाई, मनुष्य ने सुन रखा है कि अच्छे कर्म से स्वर्ग मिलता है, बोरे संदरा कितना तो इसको पक्का पता है, पर मोक्ष ब्रह्म कुटस्थ की बात जो है ना, प्रारंभ में बिल्कुल ऊपर ऊपर जाता है, पर बाद में अनुभव होता है कि भाई स्वर्ग भी बड़ा भारी बंधन है, बल्कि नरक से ज्यादा बंधन है। नरक में तो पीड़ा होगी, बैराग होगा, वहां से भागना चाहेंगे आप, पर स्वर्ग के सुख में इतनी आसक्ति कि कोई बोले चलो ब्रह्मलोक तो बोलेंगे नहीं यही बढ़िया है स्वर्ग। या जो सत्संगति है, सत्संगति से आपको धीरे धीरे शंका भाव होता है, इसके बाद निर्मोहत्वम, संसार से मोह भंग हो जाता है। मोह मतलब कि अतस्मित तद बुद्धि से मोह होता है, हाड़ मांस चाम का पुतला है, उसके अंदर क्या रखा है मालूम, सोना चांदी क्या रखा है, मल मूत्र का ढेर है, शरीर में क्या वही तो है, परंतु वह जो मलमूत्र है, वह जो पतली सी चमड़ी है ना स्क्रीन, उससे ढका हुआ है, तो ठीक से तत्व क्या ज्ञान नहीं हुआ, तो ऊपर चमकेली चमड़े को देखकर मोह हो गया। मोह मतलब शोभनाध्यास, शरीर अशुचि है, अपवित्र है, दुखालय है, तो मोह क्या हो गया, बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा है। वो मोहन दादी बोलता है ना, अधरम मधुरम, वो झूठी झूठी लार, लार होता है लार जो बच्चे के टपकता है, वो लार को क्या बोलता है कि अधरा अमृत है, अधरा अमृत नहीं, वो मोहाक्रांत। हा भगवान का अधरा अमृत हो सकता है, वहां पर अधरा अमृत का अर्थ है न धरायाम मतलब पृथिव्याम, आगे न क्या कर दो, वृतेति अधरामृत, जो धरा में, धरा नाम पृथ्वी का है, धरा बोलते पृथ्वी को, न धरायाम उपलब्यते इति अधरामृत, आ है धरा है, आगे अमृत है, तीनों को तोड़ दो। जब आप भक्ति रस में डूब जाएंगे ना, भक्ति रस में, तो वह भगवान का अधरामृत, मतलब धरा में जो आनंद मिल नहीं सकता ऐसा अधरामृत है, वो उठकर लाड़ दी समझना। लोग क्या समझते, वही अधरा, वो अधरामृत नहीं, वो तो झूठा है, शुद्ध है, उससे बदबू दुर्गंधी आती। तो मोह धीरे धीरे भंग हो जाएगा, पर प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा प्रयास करना पड़ता, प्रारंभ करना चाहिए यहां से। जैसे कि शरीर एक मकान में रहता है, शरीर के ऊपर हम कपड़े पहनते हैं, प्रत्येक दिन कपड़ा के पहनने पर भी कपड़ा हम नहीं हो जाते, शरीर हम नहीं हो जाते। हाँ, उसके मालिक कहलाएंगे, मालिक कहला सकते कि हमारा कपड़ा है, हमारा मकान है, हमारा दुकान है, ऐसा हो सकता, पर हम जो है ना मकान दुकान वस्त्र नहीं होते। ऐसे ही शरीर में लाखों वर्षों से हम रहते आए, इस शरीर मतलब कि सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में, ये तो बदलता रहता है। यह शरीर हमारे लिए है, हम शरीर के मालिक हैं, पर मैं शरीर नहीं हूं। जब आप ऐसा विवेक करते हैं तो धीरे धीरे असंगता आ जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण ने भी बात बताई है, यह जो आसक्ति है, आसक्ति से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों के प्रतिबंधक है। जो संघ है ना, चारों का प्रतिबंधक है। भागवतकार ने कहा, न ही करहि चित संगम कुर्यात तमस तीव्रम तितीरिषु, किसी से संग मत करो। यदि आपको अज्ञान रूपी, तमस ना अज्ञान का है, अज्ञान रूपी सागर से पार जाना है, किसी से संग नहीं करना। क्यों नहीं करना? किसी ने कहा कि भाई मुझे तो धन चाहिए, संग तो करना पड़ेगा, संग बिना कैसे धन कमाएंगे। किसी ने कहा कि हमें तो पुण्य कमाना है, बिना संगी साथी के पुण्य कैसे होगा? तो उत्तर दिया कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यत अत्यंत विडंबनम, ये चारों का आप प्रतिबंधक है, धर्म का, अर्थ का, काम का, मोक्ष का। यदि आप आसक्ति कर लेंगे तो साथी ने बोला, अरे आराम से सोवो, क्या बेमतलब का जग रहे, 8 बजे उठेंगे, तो धर्म का प्रतिबंध हो गया। आप गंगा में गोता लगाने गए, अब गोता लगा रहे, कहीं किसी के प्रति आसक्ति, जल्दी से आना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बीमारी तो फोन हो गया, मोबाइल, चैन से गोता भी नहीं लगा सकते, राम राम भी नहीं कर सकते हो, क्रिंग क्रिंग ना, वो बच्चा रोने लग जाता है। अब क्या थोड़ा सुनने सोचते हैं, थोड़ा सुनने के बाद मनोवृत्ति हमारी जो भगवताकार थी ना, वो जगताकार हो जाती है। फोन सुनना बुरा नहीं, सुनने के बाद जो हमारी मनोवृत्ति है ना, वो अनात्माकार हो जाती, इसलिए मना किया, नहीं सुनना, बजरा बजने दो, ये तात्पर्य इसका है। तो यह जब धीरे धीरे आप निश्चय कर लेते कि भाई, जैसे कि मैं मकान नहीं, वस्त्र नहीं, ऐसे ही यह शरीर भी मैं नहीं, इंद्रियां मैं नहीं, बुद्धि नहीं, अंतत्व नहीं, ये सब 5 भौतिक हैं। ऐसा ज्ञान होने के बाद धीरे धीरे असंगता आ जाती है। कई प्रयोग करना, जितना हम संग करते उतनी समस्या आती है, कोई न कोई समस्या, वो नए नए मुखौटा लेके आती है, मुखौटा अलग उसका होता है, अंदर वही होता है। जैसे नाटक करते ना, वो शेर का, बाघ का, भालू का, हाथी के ऊपर से मुखौटा बच्चे पहन लेते, पर बच्चा तो वही एक ही है। ऐसे यहां पर है, वो माया जब आती है, अनेक मुखौटा पहन के आती है कि बहुत अच्छा काम इसको कर लो, उसको किया, दूसरा मुखौटा पहन के आ गए, तीसरा, चौथा, पांचवा। आप पहले क्या सोचते हैं, अपने तक सोचते हैं ना, अपने तक, हमने खूब पढ़ाई पढ़ लिया, भगवान कृपा करना, अच्छी नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल गई, अच्छी बात। अब नौकरी मिलने के बाद क्या मुखौटा आ गया, अरे तू धन किसके लिए कमा रहा, कौन खाएगा, क्या उपयोग होगा, तो शादी कर लिया। यहां तक भी ठीक। इसके बाद पुत्र हुआ, यहां तक भी ठीक। यहां तक तो कोई बात है। और पौत्र में, पौत्र के प्रपौत्र में जो जाता ना दृष्टि, ये ठीक नहीं। आपका कर्तव्य पुत्र तक है, वहां तक ठीक है। उसको सन्मार्ग में लगा दिया, अपने पैर पर हो गया। पर उसको पैर पर होने के बाद जो आगे चलते ना मुखौटा, अरे भाई कम से कम जरा पौत्र को प्रपौत्र को सोचना चाहिए। आगे बहुत महंगाई होने वाली है, 4-5-10 प्लेट लेके डाल दो, होता है कि नहीं। इसी का नाम माया, इसी का नाम मोह। वो सीधा मोह नहीं आता, मुखौटा पहन के आता है। कभी आपने यह नहीं सोचा कि भाई हमारे कल्याण के लिए पौत्र प्रपौत्र या कोई भी भगवान से भूल कर प्रार्थना नहीं करता है कि भगवान का कल्याण हो। मतलब क्या बोलते हैं मालूम आप लोगों को ना, हे भगवान बड़ी पीड़ा हो रही, इनको उठा लो आप, होता है कि नहीं। इसलिए बोलता ताकि सेवा न करना पड़े, समझे कि नहीं। स्वस्थ होंगे तब तो प्रार्थना ही नहीं करेगा, बोला बढ़िया है, अच्छे रखवाली कर रहे। बच्चे बोलते ना कि भाई प्रेमपुरी क्यों जाओगे, बड़ा दूर पड़ता है, ऐसा ना घर में लगा देते हैं सब आधुनिक यंत्र, घर बैठे मजे से हाँ सुनते रहो। ये अपने लिए बोलते हैं, आपके लिए नहीं, ताकि आप घर की रखवाली करो। समझे कि नहीं। घर की रखवाली मतलब आपको ग्राम सिंह बना देते हैं। ग्राम सिंह का मतलब जानते हैं नहीं, ग्राम सिंह हाँ सब जानते हैं, गांव का शेर, घर का शेर। आपके कल्याण के लिए नहीं बोलता कि आप रखवाली करें। तो आपको विवेक होना चाहिए, सीधा बोलना चाहिए, भाई अब मेरा कर्तव्य है कि परमात्मा को प्राप्त करना, इसलिए हमें तो छोड़ो, अपनी दुनिया संभालो। पर आदमी नहीं बोलता ऐसा, क्यों नहीं बोलता मालूम, मोह है। मोह क्या है, अरे भाई ये तो अपने ही है। जब अपना शरीर नहीं हो सका, 70-80-60 वर्ष से संभालते संभालते परेशान हो गए, प्रत्येक दिन स्नान करा, बढ़िया वस्त्र पहनाओ, इसके बाद गरम गरम चाय पिलाओ, भोजन कराओ, इतना नहीं आराम कराओ बोलता है। इतनी आप चाकरी किए शरीर के साथ, पर आप परीक्षा करना, बोले हे शरीर राम ऐसा करना, आज बहुत अच्छा दिन है, कार्तिक महीना अष्टमी तिथि है, 4 घंटा बैठकर वेदांत का विचार करना, ध्यान करना। शरीर क्या बोलता है, आलस आएगा तो मन साथ नहीं देगा तो पैर दुखेगा। 4 घंटे दुनियादारी काम हो ना बात हो तो कोई जवाब नहीं देगा, शरीर भी साथ देगा, मन भी, बुद्धि भी, हाथ पैर भी। पर भगवत चिंतन तो शरीर भी देखो, जब हमारा अपना नहीं होता, अपने काम में साथ नहीं देता है तो दुनिया वाले देंगे कभी, संभव नहीं है। ये हमारी भ्रांति, इसी का नाम मोह। भ्रांति बोलते अतस्मि तद्बुद्धि, जो अपना कभी हो नहीं सकता उसको अपना मान लिया, इसी का नाम भ्रांति। इसी भ्रांति से मोह हो रहा। जो अपनी आत्मा है उस आत्मा को तो हम भुला दिए, पर इसको भुलाना उसको हम बार बार याद करते हैं। अब तो और हो गया, फोटो लगा दिया स्क्रीन पर, अब फोटो देखकर उसको याद करते हैं तो मोह बढ़ता जाता है। तो यहां पर सावधान कर दिया कि जीवन में आपको आनंद प्राप्त करना है तो सबसे पहली कड़ी है सत्संगति। और सत्संगति भी कहां करे, तलिका श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, गुरु के पास जाकर, घरे बैठकर नहीं। श्रोत्रिय घर में बैठकर तो आप उसकी आवृत्ति कर सकते हैं, पुनरावृत्ति कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, पर एक बार तो कम से कम प्रत्येक दिन आकर प्रेमपुरी में जहां सत्संग हो रहा वहां पर आपको सत्संगति। देखिए घर में और यहां में क्या अंतर है, घर में जब सुनते हैं ना तो उस यंत्र के पास यह सामर्थ्य नहीं, कि वह संकल्प करे इन वाक्यों से हमारे श्रोता को तत्व ज्ञान हो। यंत्र में सामर्थ्य नहीं, जो स्पीकर है यंत्र है आपके घर का, उससे सुन तो सकते हैं, उससे बोध नहीं होगा। बोध क्यों नहीं होगा? क्योंकि यंत्र में यह सामर्थ्य नहीं वह संकल्प करे कि हमारे वाक्यों से पद से हमारे श्रोता को तत्व ज्ञान हो, इसलिए यंत्र से बोध नहीं होता। वह सामने बैठते हैं किसी के तो सुवक्ता के अंतःकरण अंतरात्मा में संकल्प होता है कि अस्मात् वाक्यात् हमारे वाक्य से श्रोतु बोधो भवतु, श्रोता के चित्त में ज्ञान हो। तो इस संकल्प शक्ति के कारण से जब आप सामने बैठकर सुनते हैं ना तो तत्व ज्ञान होता, और यदि आप यंत्र से सुनते हैं तो आवृत्ति तो हो जाएगी परंतु उससे बोध नहीं होता, मन बाएं दाएं भग जाता। ये दोनों में अंतर है। यहां बता रहे कि भाई मोह भंग करना है तो सबसे पहले सत्संग का आश्रय। अब सत्संग कब तक करे? तो कहते हैं जब फल पक जाता है ना अपने आप गिर आता है। पहाड़ों में गांव के एक देवता निकलते हैं प्राय, हरिद्वार में भी, गंगोत्री यमुनोत्री हिमाचल यहां भी होंगे, हर पहाड़ में ग्राम देवता होते लगभग। तो एक विशेष दिन ग्राम देवता को प्रधान देवता के पास मिलाने ले आते हैं। तो जिसके ऊपर ग्राम देवता आते हैं ना वो आदमी बोलता है कट उसकी बात सच होती है। एक महात्मा ये थे, बोले भाई बहुत हमने वेदांत सुना, वेदांत चिंतन किया, मैं तुम्हारे ग्राम देवता से पूछूंगा कि मुझे तत्व ज्ञान हुआ कि नहीं। बोले ठीक है महाराज चलो पूछना। अब ग्राम देवता के पास गए, सबने पूछ वही पूछे, बोले हे ग्राम देवता बताओ मुझे तत्व ज्ञान हुआ कि नहीं, आत्मज्ञान हुआ कि नहीं। अच्छा उत्तर दिया ग्राम देवता ने। देवता ने कहा कि तत्व ज्ञान हो जाता तो तुम्हें संशय क्यों होता? अब भोजन कर लिया पेट भर गया तो संशय होता है कि पेट भरा कि नहीं भरा? पेट भर गया तो संशय नहीं होगा, सीधी बात। जब तुम्हें संशय हो रहा मतलब कुछ कसर है अभी, समझे कि नहीं? यहां पर वैसे ही सत्संग सुनने के बाद तत्वबोध होने के बाद आपको परम आनंद की अनुभूति होगी और आप और इसमें लगाएंगे लोगों को, दूर नहीं भगेंगे। अच्छी चीज प्राप्त करने के बाद उधर झुकाव होता, लगाव होता और लोगों को लगाते हुए चलो बड़ा अच्छा धंधा, बड़ी अच्छी कंपनी है, बहुत जल्दी और बहुत अच्छा पैसा मिलता, लगाते कि नहीं? ऐसे यदि आपको तत्वबोध, आज कुछ लोग होते हैं ना ज्यादा, यहां तो नहीं यूपी में बहुत मिलते हैं, उत्तर प्रदेश में, बोलते हैं महाराज तत्व ज्ञान हो गया मुझे, अब कुछ भी खटपट नहीं करना, आराम से मैं 8-9 बजे उठता हूं, मैं ही ब्रह्म हो गया था, क्या खटपट करना, गर्मी लगी तो नहा लिया, नहीं तो 2-4 दिन स्नान भी नहीं किया, वो तत्व ज्ञान नहीं हुआ। हाँ ये बहुत लोग सोचते हैं, आप तो अच्छे लोगों से सुन रहे ना, बात अलग है, उनको जल्दी तत्व ज्ञान होता है, शरीर कोई ब्रह्म मान लेते, शरीर ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म तो शरीर से अलग है। ब्रह्म सूत्र के चतुसूत्री के अंत में श्लोक आता है कि देहात्म प्रत्यो यद्वत् प्रमाणत्वेन कल्पितः, देह में जब तक आत्मबुद्धि है तब तक लौकिकम वैदिकम तद्वत एवेदम प्रमाणम त्वात्म निश्चयात्, आत्मा के निश्चय होने से पहले पहले लोकाचार वेदाचार सारे कार्य संपादन करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सुन लिया और बहुत ठंड लगी तो क्या बोल दिया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, समझ के नहीं, गर्मी लगी तो 10 बार नहा लिया है ना, और ठंड लगी तो मन चंगा तो कठोर भी नहीं, बहाना है ये, मतलब कि अपने कमी को छिपाने का बहाना। भाई जब ब्रह्मी है तो गर्मी क्यों ना आते, गर्मी में भी वही बात बोलना चाहिए ना, मन चंगा तो कठोर भी गंगा। तो आदमी बहुत होशियार बहुत चलाक, यहां चलाके नहीं चलती है, वेदांत में बिल्कुल चलाके नहीं। वही बता रहे कि धीरे धीरे सबसे पहले शरीर से अपने को अलग करने का, शरीर मतलब अन्नमय कोश से, या अन्नमय कोश मय नहीं, इसके बाद प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, अंत में आनंदमय कोश। जब पांचों कोशों से अलग करके जान लेते हैं तब मोह भंग हो जाता है। हाँ, निकट है, उसमें अविद्या वृत्ति होती है। सुषुप्ति में आनंदमय कोश की अभिव्यक्ति होती है, या बहुत प्रिय वस्तु मिल जाए, पसंदीदा चीज मिल जाए तो वहां आनंदमय कोश की अभिव्यक्ति होती है। बोलते बहुत आनंद आया तो आनंदमय कोश है, और जैसे वस्तु का वियोग हुआ अरे बेकार है, बोलते कि नहीं। तो आनंदमय ब्रह्म नहीं, आनंदमय से अलग ब्रह्म है, आनंदमय कोश है। देखिए आनंद कैसा निरपेक्ष साधन है, आत्मज्ञान, परमात्मा की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति साधन निरपेक्ष है। साधन तो केवल अंतःकरण की शुद्धि का उपाय है, या कंटके ने भी कंटकम, कांटे से कांटा निकालते ना, इस तरह से सारा साधन हमारे मनोवृत्ति को एकाग्र करने के लिए है। मन जब शुद्ध हो गया स्वतः ही अंदर से आनंद की अनुभूति होने लग जाती है, पर प्रारंभ में आपको अपनाना पड़ता साधन। जिस प्रकार से सौसुप्त सुख साधन निरपेक्ष है, कोई साधन की अपेक्षा नहीं, ऐसे ही यहां पर भी जो समाधि जन्य जो परम आनंद आत्म सुख है वह स्वयं प्रकाश है, किसी साधन की अपेक्षा नहीं है। ये हमारे मन में भ्रांति होती है ना कि बहुत एकांत हो, शांत हो, ऐसा हो, वैसा हो, माहौल शुद्ध हो, लोग अच्छे हो, तो बस तुरंत भगवान बिना बोले आ जाएंगे। ये मन की भ्रांति है, मन में भ्रांति होती है, अभी तो माहौल ठीक नहीं है, जगह भी ठीक नहीं है, अवसर ठीक नहीं है, भगवान अभी मिल नहीं सकते, सुंदर देश हो, सुंदर काल हो, सुंदर माहौल हो, तब जाकर भगवत प्राप्ति होगी, ये भ्रांति है। परमात्मा प्रत्येक क्षण क्षण मतलब प्रत्येक समय है, और प्रत्येक काल में है, देश में है, और जनजन में, प्रत्येक प्राणी के अंदर है। जब हिरण्यकश्यपु के अंदर हो सकते तो कहां नहीं हो सकते। जब प्रहलाद जी ने भगवान को प्रकट किया उस समय कोई बहुत पवित्र देश नहीं था, दैत्य का आलय था, बहुत सुंदर लोग भी वहां आसपास नहीं खड़े थे। जब बोलते ना कि क्या करें, माहौल ठीक नहीं, परिवार का, घर का, ये केवल हमारा मन हमें धोखा देता है, कुछ नहीं, जो हमारा मनीराम है ना, ये मनीराम हमें धोखा देता है कि क्या करें, मैं तो खूब भजन करना चाहता, चिंतन करना चाहता, पर लोग, परिवार वाले, कुटुंब वाले, आसपास वाले, ये सब बेकार है, ठीक नहीं। अपने मन की जो बेकारपना है ना उधर आरोप कर देते, फिर देश में कि मुंबई तो ठीक नहीं, या संभव नहीं, हिमालय में, हिमालय जाएंगे ना ठंडी लगेगी तो भागेंगे, बोले अरे बेकार है वहां तो मर जाएंगे ठंडी में। ये मन का स्वभाव है कि हमेशा दूर देश, दूर काल में सुख को ढूंढता है, जो सामने चीज मौजूद है ना वहां पर इसे प्रीति आनंद का अनुभव नहीं होता। अपने मन को अतीत या भविष्य के काल में दूर देश में आनंद को ढूंढता, वहां जाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा, और जाने के बाद फिर पीछे याद आता, अरे वही बढ़िया था, वे मतलब का परेशान हुए। ये मन का स्वभाव है, कोई चंचल बंदर के समान। तो प्रत्येक देश में, काल में और जंजर में परमात्मा की व्याप्ति होने के नाते इस भ्रांति को, मोह को हमें छोड़कर क्या करना चाहिए, जाए वहीं पर अपनी आत्मा का चिंतन करे, तो धीरे धीरे असंगता प्राप्त होगी, असंगता से मोह भंग होगा और मोह भंग होने से निश्चल तत्वम, निश्चल बुद्धि हो जाएगी हमारी तत्व में। एक बार निश्चल हो गए तो फिर दुनिया कोई तूफान आपको डिगा नहीं सकता है। शेष कल सुनेंगे। पूर्णमद पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।